So welcome to another session today. Well, thank you very much for coming. You are enthusiastic to learn. And we are also enthusiastic to tell. तो अभी तक हमने दो सेशन जो किए उसमें ये देखा कि बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं लाइफ की और वर्ल्ड की जो विज्ञान के द्वारा हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और विज्ञान के द्वारा समझ पा रहे हैं कि विज्ञान की एक लिमिट है और उसके बियॉन्ड मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए इसके बियॉन्ड की कोई एक साइंस चाहिए, साइंस ऑफ अनदर पैराडाइम। और पिछली कक्षा में हमने चेतना कॉन्शियसनेस के विषय में देखा कि हम लोग वास्तव में स्पिरिट ऑन है, स्पिरिट स्पिरिचुअल एटम जो चेतना का स्रोत है, शरीर नहीं है। और फिर उसके अलग अलग गुण हमने देखे कि आत्मा अमर है, यानी कि हम अमर हैं और ये शरीर के मरने पर भी हम नहीं मरते हैं। अभी ये सब डिस्कशन में बहुत एक प्रश्न बार बार आया कि ये जो भी शास्त्रों में लिखा है आत्मा है या भगवान है या जो भी है, उसका प्रमाण क्या है। विशेष रूप से आप देखिए तो हमारे करिकुलम में वेदों को वैदिक माइथोलॉजी कह करके बताया गया है। माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है? सॉरी, नहीं, माइथोलॉजी मतलब ग्रंथ, मन ग्रंथ, मिथ। माइथोलॉजी शब्द जो आया वो मिथ से आया, मिथ मतलब मन ग्रंथ, केवल बस कहानियां हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं। सो इसके पीछे हिस्ट्री है कि एक्चुअली तक्षशिला नालंदा, आपने नाम सुना है? सो यस, एक समय था जब पूरे विश्व के लिए भारत के अंदर तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय थे और पर्शियंस अरब्स वो लोग यहाँ पर आकर के मैथमेटिक्स साइंस सब यहाँ से सीखे और फिर अरब से यूरोपियंस ग्रीक लोगों के पास ये विज्ञान गया और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये सब हुआ। इसलिए बहुत सारे यूरोपियन साइंटिस्ट वो लोग स्वीकार करते हैं कि सारा जो ज्ञान एक्चुअली आज यूरोप में है उसकी जो रूट है वो वेद है। जैसे हमने कल आपको स्लाइड दिखाई थी सर विलियम जोन्स की, जो न्यूटन का जो सिद्धांत ऑलरेडी इट इज़ देयर, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो विशेष रूप से उन्होंने ऐसे इंडोलॉजिस्ट्स को नियुक्त किया जो लोग संस्कृत पढ़े, हमारे शास्त्रों को पढ़े। किस उद्देश्य से? कि इनको हमें भारत के लोगों को ऐसा प्रदर्शित करना है कि ये सब मनगढ़ंत है, ये सब प्रिमिटिव है। इस प्रकार से उन्होंने उसकी व्याख्या की और इसलिए आज तक भी हमारे करिकुलम में दुर्भाग्य से वही चला रहा है, जिससे कि क्योंकि जरूरी था उनके लिए कि भारत के लोग भारत की संस्कृति और उसके दर्शन को हीन दृष्टि से देखें, जिससे कि हम लोग उस पर राज कर सकें। दैट वॉज द मोटिव। लेकिन जैसे बहुत सारे हम प्रमाण देखे अलग अलग वैज्ञानिकों के और हमारे महान ऋषि मुनियों के कि कैसे इसमें महानतम ज्ञान है, तो आधुनिक विज्ञान से हम लोग सब उसमें हम प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न स्वाभाविक आना कि अपनी मॉडर्न साइंस में तो हम लेबोरेटरी में जाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें प्रूफ मिलता है, लेकिन विज्ञान में ये प्रूफ तो है ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं शो मी गॉड या व्हाट इज द प्रूफ। तो इसलिए आज का ये जो विषय है इसमें हम लोग देखेंगे कि वेदा क्या ऐसे ही बस मनगढ़ंत है या उसका प्रमाण क्या है, उसमें प्रमाण का तरीका क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम जब प्रमाण मांग रहे हैं, एविडेंस, प्रमाण मतलब एविडेंस, व्हाट इज एविडेंस ऑफ ट्रुथ। तो एविडेंस जनरली हम अपनी इंद्रियों को लेके चल रहे हैं कि मुझे दिखाओ, मुझे दिखना चाहिए या मुझे अनुभव होना चाहिए, मुझे सुनना चाहिए। लेकिन हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है वो बहुत लिमिटेड है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 6 blind men and 1 wise man story। एक एलिफेंट है, उसको ये 6 ब्लाइंड लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये क्या है चीज, उनको पता नहीं है क्या है। ठीक है, एक ने सूंड पकड़ी हुई है, एक ने दांत पकड़े हुए हैं, एक ने कान पकड़े हुए हैं, ऐसे करके उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, अंधे हैं। तो जो सूंड पकड़े हुए हैं उसे लग रहा है कि ये जो चीज मेरे हाथ में है वो एक सांप है, ठीक है। उस प्रकार से अलग अलग किसी को रस्सी दिख रही है, किसी को ये एक्स दिख रहा है, किसी को दीवार दिख रही है, तो किसी को एरो दिख रहा है, तो किसी को टिकटन दिख रहा है। क्योंकि उनकी वो अंधे हैं, इसलिए वो उसको इस हाथी को नहीं समझ पा रहे हैं कि हाथी है। लेकिन जब कोई एक व्यक्ति जो हाथी को देख रहा है और जिसको जानकारी आती है, वो उनको समझा पाएगा कि एक्चुअली जिसको आप सांप कह रहे हो वो हाथी की सूंड है, जिसको आप रस्सी कह रहे हो वो हाथी की पूंछ है। तो उसी प्रकार से जो हमारा मॉडर्न साइंस में एविडेंस का तरीका है वो दो प्रकार का है। एक सेंस परसेप्शन से हम उस एविडेंस लेते हैं, उसको एविडेंस मानते हैं जो हमारी हम अपने सेंस ऑर्गन से देखते हैं या सुनते हैं या सूंघते हैं, उसको टेक्निकल भाषा में शास्त्र में बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब जो डायरेक्टली हमारी सेंसेस से हम लोग परसीव करते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका है अनुमान प्रमाण। अनुमान मतलब लॉजिक, रीजनिंग, ठीक है। ये दो चीजों को मिला करके जो तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, उसे कहते हैं असेंडिंग प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज। तो ज्ञान प्राप्त करने के दो तरीके हैं, असेंडिंग प्रोसेस एंड डिसेंडिंग प्रोसेस। तो हमारा जो मॉडर्न साइंस है उसका तरीका है असेंडिंग प्रोसेस, जिसमें हम अपनी इंद्रिय और अपने बुद्धि शक्ति के बलबूते पर सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, फिर डाटा को रीड करते हैं और उसके बेस पे थ्योरी बनाते हैं। जैसे न्यूटन ने एक एप्पल को गिरते हुए देखा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन किया, एक हाइपोथेसिस बनाई, लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंटेशन किया, उसके कुछ डाटा आए, उसको स्टडी किया और उससे एक थ्योरी बनाई और फिर उसको फर्दर इस प्रकार से वो हम आगे बढ़ते गए। तो ये तरीका है असेंडिंग, नीचे से ऊपर, है ना। लेकिन तो इसमें ये दो प्रमाण में सीमितताएं हैं, उसमें इम्परफेक्शन है, कैसे वो हम थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। जैसे आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि एक रेल की पटरी, लेकिन रेल की पटरी आपको कैसे दिखती है, देखने में कन्वर्जिंग दिखती है, लेकिन वास्तव में तो ऐसा नहीं है, है ना। तो इस प्रकार से जो हमारी आंखें हैं वो इम्परफेक्ट है, ये उसका उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि ये बीकर में आपको एक पेंसिल है तो कैसे दिखाई देगी, टेढ़ी दिखाई देगी, जबकि ऐसा है नहीं। उसी प्रकार से दूर से आप देखेंगे तो पानी दिखाई देगा गर्मी के समय में, मिराज, है ना। उसी प्रकार से कॉनकेव कॉन्वेक्स रिफ्लेक्शन जो है वो आपको टेढ़े मेढ़े दिखाई देंगे। ये सब हमें क्या दिखा रहा है कि जो भी हमारा सेंस परसेप्शन है, क्योंकि सेंसेस हमारे इम्परफेक्ट हैं, इसकी वजह से ये सब हम एग्जैक्टली इसको परफेक्ट नॉलेज हम उससे गेन नहीं कर पाते हैं, वी कैनॉट एक्वायर कंप्लीट नॉलेज। फिर दूसरा साइंस का जो तरीका है अनुमान प्रमाण। अनुमान मतलब बाई लॉजिक, बाई रीजनिंग, शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा। जैसे कि डार्विन थ्योरी का आपने नाम सुना होगा। तो डार्विन थ्योरी में बहुत सारा ऐसे स्पेकुलेशन डार्विन ने किया, कुछ देखा और फिर ये स्पेकुलेट किया। जैसे कि एक उदाहरण देखें स्पेकुलेशन का, ये व्हेल मछली कैसे आई, तो डार्विन ने देखा कि जो भालू है वो ऐसे मुंह खोल करके इंसेक्ट्स खा रहा है, तो उसने स्पेकुलेट किया कि अगर बहुत लाखों सालों तक ये भालू ऐसे पानी के अंदर ऐसे मुंह खोल के इंसेक्ट खाता रहेगा तो धीरे धीरे इवॉल्व होता होता वो व्हेल मछली बन जाएगा। ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया में दिया हुआ है कि जिराफ कैसे बना, कि पहले लाइफ ओशन में क्रिएट हुई, फिर ओशन से धीरे धीरे तट पर आई, वहाँ पर रेप्टाइल्स बन गए, रेप्टाइल्स ने पहले नीचे के कीटाणु को और वनस्पति को खाया, वेजिटेशन को, फिर जब वो ख़त्म हो गई तो उसमें से कुछ लोगों ने गर्दन ऊपर उठाने की कोशिश की और फिर गर्दन उठाते गए तो धीरे धीरे गर्दन लंबी होते तो जिराफ बन गए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डार्विन हैज, दिस इज स्पेकुलेशन, है ना। तो ये अनुमान प्रमाण जो है ये भी परफेक्ट नहीं है। जैसे एक छोटी सी कहानी आपको मैं बताता हूँ कि एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो है वो स्टडी कर रहा था कॉकरोच के ऊपर, तो उसने लेबोरेटरी में कॉकरोच को कान में जाकर के बोला रन, कॉकरोच भागा। दूसरे स्टेप में उसने क्या किया, कॉकरोच की एक टांग तोड़ दी और फिर उसको बोला रन, तो फिर कॉकरोच भागा लेकिन थोड़ा दिक्कत से भागा। फिर नेक्स्ट स्टेप में उसने दो टांग तोड़, दूसरी टांग भी तोड़ दी, फिर बोला रन, तो कॉकरोच अभी भागा लेकिन बहुत लड़कड़ा के भागा। फिर ऐसे कर करके उसने कॉकरोच की सारी टांगें तोड़ दी और फिर सारी टांग तोड़ने के बाद बोला रन, तो फिर कॉकरोच हिला ही नहीं। तो फिर उस साइंटिस्ट ने अपनी थीसिस कंप्लीट की कि जब कॉकरोच की सारी टांगें तोड़ देते हैं तो कॉकरोच को सुनाई देना बंद हो जाता है। क्योंकि रीजनिंग से तो ये भी एक पॉसिबिलिटी निकल के आती है. तो रीजनिंग या पॉसिबिलिटी, रीजनिंग से, लॉजिक से हमारे को अनेक अनेक पॉसिबिलिटी नजर आते हैं, लेकिन उसमें सच क्या है उसके लिए तो फिर से हमें अपनी इंद्रियों पे ही डिपेंड करना पड़ेगा. जैसे आपको पता होगा फिजिक्स में आज हम बात कर रहे हैं पैरेलल यूनिवर्सेस की. अभी पैरेलल यूनिवर्सेस बाय साइंस वी कैन नेवर गो देयर. इट्स ओनली अ पोस्टुलेट, इट्स ओनली अ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, बट वी विल नेवर बी एबल टू गो इन टू दोज बिकॉज दे आर ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस. सो लाइक दैट साइंस के अंदर हमें बहुत सारे हम स्पेकुलेशन करते हैं, इसलिए क्या होता है साइंटिफिक थ्योरीज चेंज होती रहती हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण है और लॉजिक भी इंद्रियों के ऊपर बेस्ड है, इसलिए साइंटिफिक थ्योरीज हमेशा चेंज होती रहती हैं. जैसे एक और उदाहरण देखें तो डार्विन के अनुसार आदमी केवल 40,000 साल पहले आया और एप्स बहुत पहले आए थे, लेकिन अभी प्रमाण मिल रहे हैं कि आदमी भी लाखों लाखों साल पहले के अवशेष मिले हैं, फॉसिल रिकॉर्ड्स. तो इस तरह से बहुत सारी हमारी जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम देखते हैं वो सब बदलता रहता है, उसको चेंज करने की जरूरत पड़ती रहती है. सो प्राइमरीली हमारे, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि एटम, नील बोर का मॉडल था, फिर श्रोडिंगर, ऐसे करके ये एटॉमिक मॉडल्स जो है वो बदलते गए, ऐसे हमारी साइंटिफिक थ्योरी जो है बदलती रहती है. तो इस सब का कारण है, पहला हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, दैट इज द फर्स्ट रीजन. वी ऑल हैव फोर डिफेक्ट्स. वन इज इम्परफेक्ट सेंसेस, सेकेंड इज दैट वी टेंड टू गेट इल्यूजन, थर्ड दैट वी हैव टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, एंड देन वी हैव चीटिंग प्रोपेंसिटीज. ये चार डिफेक्ट होने की वजह से ये जो मॉडर्न साइंस का जो तरीका है प्रत्यक्ष प्रमाण यानी सेंस परसेप्शन से नॉलेज गेन करने का और रीजनिंग से नॉलेज गेन करने का, अल्टीमेटली इससे जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं वो अल्टीमेटली इम्परफेक्ट रहती है, इसलिए इसको हमेशा चेंज करने की कोशिश करनी पड़ती है. और विशेष रूप से जब हम बात कर रहे हैं जो सेंसेस के बियॉन्ड की रियलिटी है उसके लिए तो ये मेथड इनअप्रोप्रिएट है. तो अब इसके जैसे कुछ उदाहरण देखें हम लोग चार इम्परफेक्शन के. हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट, आप सब जानते हैं कि जो वेवलेंथ है कलर्स की उसकी एक बहुत छोटी वेवलेंथ ही हम लोग देख सकते हैं. हमारे आँखों की जो सुनने की वेवलेंथ है वो भी बहुत कम है, 22,000 हर्ट्ज़ है ना, इतना ही हम लोग सुन सकते हैं. डॉग, एक डॉग विसिल आती है, यू कैन प्ले एंड डॉग्स कैन लिसन बट वी कैन नॉट. अभी हम सोच सकते हैं कि ठीक है हमारी इंद्रियां तो अपूर्ण है, लेकिन हम आज इतने सारे साइंटिफिक टूल्स बना दिए हैं, टेलीस्कोप बनाए हैं जिससे कि हमारी इंद्रियों का इम्परफेक्शन अभी हमने ओवरकम कर लिया है ना. तो इसके बारे में साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, इज ए नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट, इवन इफ वी फोटोग्राफ स्टार इवेंचुअली वी हैव टू टेक इन बाई अवर सेंसेज व्हाट द फोटो शोज है ना. फर्दर मोर विदाउट अवर सेंसेज वी कैनॉट हैंडल कैमरा, इवन इफ एम्पलीफाइड रिफाइंड बाई इंस्ट्रूमेंट्स द नॉलेज इज नो मोर परफेक्ट देन अवर इम्परफेक्ट सेंसेज. क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जो भी एक्सपेरिमेंटल टूल्स हैं अल्टीमेटली तो उनको हमारी सेंसेज से हमको उसको पढ़ना होगा है ना, उसको हैंडल करना होगा, उसको बनाने वाले भी यही सेंसेज हैं. सो अल्टीमेटली अवर सेंसेज रिमेन इम्परफेक्ट. फिर सेकेंड डिफेक्ट जो है हमारे में, दैट इज टू गेट इल्यूजन. अभी इसके कुछ सिंपल उदाहरण हम देखें, जैसे टंग है, तो अगर आप कोई मीठी चीज़ खा रहे हैं उसके बाद में आपने ऑरेंज को खाया तो आपको खट्टी लगेगी, लेकिन अगर आप ऑरेंज से भी ज़्यादा खट्टी कोई चीज़ खा लें जैसे नींबू, तो फिर आपको ऑरेंज कैसा लगेगा, वो मीठा लगेगा. उसी प्रकार से स्किन है, तो स्किन में अगर आप पानी को टच करेंगे, अपने हाथ अगर आपके गर्म हैं तो पानी ठंडा लगेगा, लेकिन अगर हाथ ठंडे हैं तो वही पानी आपको गर्म लगेगा. सो ईच नाउ, अभी हम आपको कुछ दिखाएंगे ऑप्टिकल इल्यूजन. हर एक पिक्चर को आप देखिए और बताइए आपको क्या दिख रहा है, प्लीज रेज योर हैंड्स. इज आर यू सीइंग एन ओल्ड लेडी और अ यंग लेडी, एवरीबडी सीइंग यंग लेडी, एनीबडी सीइंग ओल्ड लेडी, यस ही इज सीइंग ओल्ड लेडी. अगर आप ये नाक माने और ये मुंह माने, ये थोड़ी है, सो देन दिस बिकम्स एन ओल्ड लेडी, ठीक है. सो लाइक दैट सम पीपल विल सी ओल्ड, सम पीपल विल सी. नाउ व्हाट यू आर सीइंग, आर यू सीइंग, व्हाट यू आर सीइंग हियर, ट्राइंगल, बट एक्चुअली देयर इज नो लाइन हियर, बट दिस इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, देयर इज नथिंग हियर, बट यू आर सीइंग अ ट्राइंगल. Here, how many pictures you are seeing here?
5%.
Guitar bhi hai, otherwise mooch bhi hai. Ek hi boodhe aadmi ki mooch bhi hai. So like that, so many things you can see. Similarly here, you see again, badal hai, ke jahaj hai, so many things you can see. Yes. Is it static or is it moving? Moving, see, he is seeing moving. As you start focusing, it will start moving. Now you focus, aage piche ho, aise aage piche ho. So, this will start moving, like that. Jaise ek hi height ke hain, but under optical illusion, they appear to be different. अभी आप इसके सेंटर में फोकस करेंगे, सेंटर में फोकस कीजिए, आगे पीछे होइए सेंटर में, आगे पीछे होइए सेंटर में फोकस करते हुए. व्हाट आर यू सीइंग? मूविंग. दिस सर्कल स्टार्ट मूविंग, है ना, बट दे आर स्टैटिक. सिमिलरली दिस 3D इल्यूजन्स. सो दिस इज एन एग्जांपल हाउ आवर सेंसेस आर वी हैव टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन, है ना. एक अंधेरे में आपने देखा होगा रस्सी पड़ी तो हमको एकदम से सांप लगता है ना, इल्यूजन. हम अपने बॉडी को अपना मानते हैं कि हम यही हैं, हमारी रियलिटी वास्तव में ये नहीं है. ये सब उदाहरण है कि वी टेंड टू गेट इल्यूजन. सिमिलरली टू कमिट मिस्टेक्स इज अनदर इम्परफेक्शन. तो साइंटिस्ट ने, हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं. जैसे कि कुछ उदाहरण देखें, पहले ब्रेन को समझा जाता था कि ये कूलेंट है, एक ब्लड को कूल करने का ऑर्गन है एट वन टाइम. At one time, this pituitary gland in the brain, it was thought to be a vestigial organ. लेकिन अभी विज्ञान ने और प्रगति की तो क्या पता लगा कि ये पूरे हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन है. तो जब भी कोई हमारी पूरी पुरानी साइंस की जो खोज है वो गलत सिद्ध होती है नई खोज से, तो हम कहते हैं अभी साइंस इज प्रोग्रेसिंग. बट एक्चुअली वॉट इज हैपनिंग इज वी आर रियलाइजिंग दैट वी कमिटेड ए मिस्टेक. तो उसको हम नाम देते हैं प्रोग्रेशन का. आज आप जो लोग लिख रहे हैं एग्जाम्स, वही चीज अगर आप आज से 50 साल बाद लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि 50 साल बाद में वो सब कोई बदल चुका होगा. सो इस तरह से साइंस चेंज हो रही है, हम उसको प्रोग्रेस कह रहे हैं, बट अल्टीमेटली वन इम्परफेक्शन से हम एक दूसरे इम्परफेक्शन में आ रहे हैं. हबल कॉन्स्टेंट की वैल्यू 3 बार बदल चुकी है, तो अभी कॉन्स्टेंट है कि वेरिएबल है पता नहीं. स्मॉल मिस्टेक्स कैन लीड टू लार्ज डिजास्टर, है ना, लार्ज डिजास्टर्स. जैसे कि एक बार प्लेग फैला, तो उस समय में साइंटिस्ट लोग सोचते थे कि प्लेग जो है बिल्लियों से फैलता है, तो उन्होंने क्या किया, सारी बिल्ली मार दी. तो उससे क्या हुआ, चूहों की संख्या बहुत बढ़ गई, तो प्लेग और ज्यादा फैलने लगा. सो ऐसे बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं. अभी आप देख रहे हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस है, हमने ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप किए हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, उसके लिए परेशान है. सो दिस इज बिकॉज वी हैव लिमिटेड सेंसेस, इम्परफेक्ट सेंसेस, और उससे हम पूरे संसार को समझने का जब प्रयास करते हैं तो ऐसे जैसे आप देख रहे थे मूवी में, छोटा सा एक है वो इज ट्राइंग टू प्ले विद सम बिग मशीन, अल्टीमेटली हम अपने लाइफ को और कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं. देन नेक्स्ट डिफेक्ट इज चीटिंग प्रोपेंसिटी. तो ऐसे साइंस के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर साइंटिस्ट लोगों ने एक थ्योरी उनकी होती है, एक मेन स्ट्रीम साइंस होती है, अभी उसको सही सिद्ध करने के लिए डाटा जो है वो मैनिपुलेट करते हैं. जैसे कि डार्विन थ्योरी को बोलने के लिए एक पिल्ट डाउन मैन 1912 में मिसिंग लिंक, कि एप और ह्यूमन बींग्स के बीच में मिसिंग लिंक मिल गया है, ऐसा बताया, एक अवशेष. लेकिन बाद में पता लगा कि अवशेष जो है वैज्ञानिकों ने इसको जबड़े को शेप दे करके ऐसा बनाया था कि बीच का दिखे, क्योंकि इनको बिल्कुल विश्वास है कि ये डार्विन थ्योरी तो सही है, अभी मिसिंग लिंक मिल नहीं रहा है तो एक बना दो. ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि हम लोग नाम के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए चीटिंग करते हैं. तो ये चार हमारे अंदर प्राइमरी डिफेक्ट हैं. कौन कौन से, कैन यू रिपीट? फर्स्ट इम्परफेक्ट सेंसेस, देन टू गेट इल्यूजन, टू कमिट मिस्टेक्स एंड चीटिंग. इन चारों डिफेक्ट की वजह से हम लोग जो हैं वो ये जो दोनों तरीका असेंडिंग प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज है उससे इनकम्प्लीट नॉलेज मिलती है, परफेक्ट नॉलेज नहीं मिलती है। और विशेष रूप से जो इंद्रियों का परे का ज्ञान है, इसलिए महाभारत में क्या कहा गया है, अचिंत्य खलु ये भावा न तर्केन योजयेत। अचिंत्य मतलब जो हमारी इंद्रिय और बुद्धि के परे का है उसको केवल तर्क और इंद्रिय से हम नहीं जान सकते। इंद्रिय यूज करनी है, तर्क यूज करना है, लेकिन केवल उससे नहीं जान सकते। तो फिर प्रश्न ये उठता आगे, ये सब उसके कुछ उदाहरण है, मैंने आपको बताया था कल गुडल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम, कि कोई भी एक गिवन सेट में एक क्वेश्चन ऐसा रह जाएगा जो अनआंसर्ड होगा। आई डोंट नो हाउ मेनी हैव हर्ड अबाउट इट। सो इसके द्वारा हमारी ये यूनिवर्स के अंदर बैठे बैठे हम कभी भी यूनिवर्स को नहीं जान पाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। यूनिवर्स के बाहर की हमें कोई जानकारी चाहिए तभी हम यूनिवर्स को समझ पाएंगे। नाउ सो क्वेश्चन अराइजेस कि ठीक है, हम ये तो अभी कुछ हद तक समझ रहे हैं कि मॉडर्न साइंस की लिमिटेशंस हैं, तो फिर क्या तरीका है, क्या कोई और तरीका है सच्चाई को जानने का, ये सब तथ्यों को जानने का, चेतना उत्पत्ति कैसे हुई है संसार की, हम कौन हैं, क्यों है ये संसार, कैसे बना है, इसको जानने का कोई तरीका है क्या। नाउ वी वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस टू यू अनदर प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज जिसको कहते हैं डिसेंडिंग प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज। डिसेंडिंग प्रोसेस क्या है, गेटिंग नॉलेज फ्रॉम ए परफेक्ट अथॉरिटी, गेटिंग नॉलेज फ्रॉम ए परफेक्ट अथॉरिटी। एक सिंपल उदाहरण से मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक बच्चे को उसकी माँ कौन है, पिता कौन है, कैसे पता चलता है, माता पिता बताते हैं, क्योंकि माता ने उसको जन्म दिया है, उससे अच्छा कोई अथॉरिटी हो सकता है बताने का कि कौन है उसकी माँ, क्योंकि उसी ने उसको जन्म दिया है, और माँ बता सकती है पिता कौन है। तो इसलिए माता पिता जो है, माता वो परफेक्ट अथॉरिटी है बच्चे को बताने के लिए, वो जेन्युइन मदर है, अपने बच्चे से प्रेम करेगी और उसके लिए उसको बताएगी और बच्चा उसको स्वीकार करेगा, आसानी से समझ जाएगा कि उसके मदर कौन है। मान लीजिए अगर हम बच्चे को ऐसे छोड़ दें तो कि अभी अपने आप पता करो तुम्हारे माता पिता कौन है, साइंस ने बड़ी प्रगति कर ली है, बड़े हो जाओ HLA टाइपिंग सीख लेना, DNA फिंगरप्रिंटिंग, और उसे अपने आप पता लगाना तुम्हारे माता पिता कौन है। आजकल DNA टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है ना, हम लोग HLA टाइपिंग कर सकते हैं, एक प्रोसेस है HLA टाइपिंग, उसमें हम DNA को मैच करते हैं कि इसका कौन पिता है। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, हमको पिताजी पता नहीं है हमारे, क्योंकि कितने सारे मेल्स हैं, कितने सारे लोगों को हमको टेस्ट करना पड़ेगा, एक एक टाइपिंग में यदि 8 मिनट भी 10 मिनट भी लगेगा तो पूरा बूढ़े हो जाएंगे, हमें पिताजी पता नहीं लगेंगे हमारे। लेकिन आसान तरीका है, अगर हमारी माँ हमको बताए तो हमको पता लग सकता है। तो अभी थोड़ा ध्यान से सुनिए कि कोई भी एक मनुष्य यदि सरल बुद्धि से सोचे इस जगत को जो हम देख रहे हैं, इस नेचर को देख रहे हैं, अपने शरीर की संरचना को देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं इंटेलिजेंस है। जैसे मैं एक सिंपल उदाहरण लेता हूँ, ये पेन है, इस पेन को देख करके हम कह सकते हैं कि इस पेन को बनाने वाला कोई व्यक्ति होगा जिसके अंदर बुद्धि होगी, जिसके अंदर एक पर्पज होगा, उस ऐसे व्यक्ति चाहिए। बाकी ये एलिमेंट जो है, प्लास्टिक है, कुछ स्टील है, ये अपने आप जमीन में, जैसे प्लास्टिक कहाँ से आता है, क्रूड ऑयल, प्लास्टिक क्रूड ऑयल, स्टील वो है आयन ओर, है ना। अभी आयन ओर और क्रूड ऑयल करोड़ों साल तक भी अपने आप रहें और उसके ऊपर लॉज ऑफ नेचर अप्लाई होते रहे तो भी क्या आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अपने आप से ये पेन बन के आ जाएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि इस पेन के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें इंटेलिजेंस एंड पर्पस दिखाई दे रहा है। जैसे ये साइज है पेन का इतना, कौन सा ऐसा लॉ है फिजिक्स का जो ये डिसाइड करे कि पेन का साइज अपने आप से यही आ जाएगा, ऐसा कोई लॉ नहीं है, ये तो बनाने वाले की चॉइस है। बनाने वाले ने देखा कि मुझे पर्पस है एक पेन बनाना है जिसको आदमी होल्ड कर सके, तो आदमी को होल्ड करने के लिए क्या कितना सुविधाजनक होगा, इतना लंबा पेन बना देता तो उसे लिखते कैसे, छोटा होता तो फिर दिक्कत है। तो उसने एक पर्पस, ही इज एबल टू, ही बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस ही इज एबल टू डिजाइन दिस। ये कलर है, कौन सा ऐसा लॉज ऑफ फिजिक्स है जो डिसाइड करेगा कि कलर इस पेन का ये होगा, इट्स फ्री विल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स हैं जिसको देख करके हम कह सकते हैं कि ये इंटेलिजेंस इसमें चाहिए। उसी प्रकार से नेचर के अंदर हर पग पग पर ऐसी चीजें हैं जिसको देख करके परफेक्ट इंटेलिजेंस दिखाई देती है। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, MBBS के अंदर हम लोग शरीर के अंदर की संरचना को देखते हैं, तो एक एक चीज, एक बार हम लोग एक ओपन हार्ट सर्जरी देख रहे थे। ओपन हार्ट सर्जरी मतलब यू कट ओपन एओटा, एक अपनी जो एक आर्टरी होती है, द बिगेस्ट आर्टरी एओटा। सो आपको क्या होता है, ओपन हार्ट सर्जरी करने में पूरा ब्लड जो है वो डाइवर्ट करना होता है एक मशीन में, देन ओनली कैन ऑपरेट द हार्ट। सो हाउ अमेजिंग एवरीथिंग इज, इतना हाई टेम्परेचर पे वो, हाई प्रेशर पे वो ब्लड जा रहा है, अगर थोड़ा सा भी हम चुप गए तो ब्लड जो है वो इट विल शूट टिल द रूफ, इतना प्रेशर है उसमें, है ना। कैसे बॉडी के अंदर उसको कंट्रोल किया गया है, कैसे इम्यून सिस्टम, कोई भी बैक्टीरिया आता है उसको कैसे वो बॉडी अंदर उसको अलर्ट हो जाती है। एक हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री है BBC की, वन डे विल शो यू मिरेकल्स विद इन द बॉडी। बच्चे का जन्म जब होता है, पहली सांस, फेफड़े जब खुलते हैं, इम्यूनिटी उसके अंदर है नहीं, माँ के अंदर से इम्यूनिटी आ रही है और धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है, एवरीथिंग इज मिरेकुलस। इतनी जितनी हमने आज तक जितने भी मशीन्स बनाई हैं उससे कहीं ज़्यादा मशीन्स कॉम्प्लिकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड आर देयर विद इन। हम तक जो नकल कर रहे हैं ना, जैसे हमने हवाई जहाज बनाया, किसकी नकल की हमने, चिड़िया की, बट इट्स अ वेरी बैड इमिटेशन। चिड़िया का कहीं पर क्रैश नहीं होती है, मच्छर की क्रैश नहीं होते, आप देखें बहुत सारे मच्छर एक ही रूम में घूमते रहेंगे, क्रैश नहीं होंगे वो लोग, सब छोटे से उसके अंदर रडार भी सिस्टम, सब कुछ सिस्टम है। इट्स सोचने की बात है, सोचने की बात है, लेकिन हमारे क्या ये बटन बंद कर दिया जाता है, सोचो मत, अपने आप आया, सब अपने आप आया, बस हो गया है, बस हो गया है, हम ऐसे मूर्ख बन जाते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा भी ध्यानपूर्वक, थोड़ा सा बुद्धिमानी से आप देखो, सोचोगे तो आप देख सकते हो कि नेचर को देख करके हम समझ सकते हैं कि उसमें इंटेलिजेंस है। सो इस प्रकार से कोई भी एक सेन व्यक्ति समझ सकता है कि कोई ना कोई इस सृष्टि के पीछे कोई ब्रेन, कोई पर्पस होना चाहिए। तो वो जो पर्पसफुल व्यक्ति, पर्पस होना, इच्छा होना, बुद्धि होना, ये एक पर्सन के अंदर होता है, ट्रेट, पर्सनैलिटी ट्रेट है। इन पर्सनल चीज़ों के अंदर विचार करना, इच्छा करना, पर्पस होना नहीं होता है, इट डिफाइंस अ पर्सन, ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। तो लॉजिकली, रीजनेबली, द मोस्ट लॉजिकल हाइपोथेसिस इज दैट देयर शुड बी अ डिजाइनर, अ पर्सन विद अ पर्पस बिहाइंड दिस होल सेटअप, है ना। नाउ जैसे किसी ने घड़ी बनाई, किसी व्यक्ति ने बनाई, तो डेफिनेटली वो कम्युनिकेट भी करेगा कि मैंने ये क्या बनाया है, क्यों बनाया है, कैसे इसको ऑपरेट करना है। यू विल नॉट इमेजिन कि बना के अपनी लेबोरेटरी में रख दिया और बस किसी को पता ही नहीं, ऐसा तो नहीं करेगा। जब कुछ बनाया है तो कम्युनिकेट भी करेगा। तो उसी प्रकार से अनदर, अगेन वी कैन इजीली रैशनलाइज कि जो इंटेलिजेंट सुप्रीम पर्सन है, जिसने सब सृष्टि बनाई है, तो वो चाहेगा कि हमको बताएं कि क्या बनाएं, क्यों बनाएं, हमें यहाँ क्या करना है, करेक्ट, इट इज रीजनेबल हाइपोथेसिस। तो अभी हमें ये जानना है कि कैसे हम कॉन्टेक्ट करें उस सुप्रीम व्यक्ति को, अगर उनसे, जिन्होंने ये सब खुद बनाया है, इफ देर इज सम वे दैट वी कैन कॉन्टेक्ट हिम एंड लर्न फ्रॉम हिम, दैट इज द परफेक्ट वे टू नो एवरीथिंग वंस फॉर ऑल। अपने बलबूते पर प्रयास करने से हमेशा स्पेकुलेशन, इम्परफेक्ट नॉलेज मिलेगा, लेकिन यदि ऐसा कोई हमें सोर्स मिल जाए, इफ यू कैन कॉन्टेक्ट द सुप्रीम पर्सन, देन दैट इज द परफेक्ट वे। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग प्रोसेस, जो नॉलेज ऊपर से नीचे की तरफ आती है। सो हमने देखा रीजनेबली दैट सुप्रीम पर्सन शुड बी विलिंग टू कम्युनिकेट। नाउ ओनली थिंग इज हु विल बी एबल टू रिसीव दैट कम्युनिकेशन। जैसे आप यहाँ पर आए हैं तो कुछ एक एग्जाम पास करके आए हैं, एक आपकी क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से आपको एडमिशन मिला है, करेक्ट। तो वो जो सुप्रीम पर्सन है वो नॉलेज हमें देना भी चाहे तो भी हमारे अंदर भी एक योग्यता होनी चाहिए कि हमारे अंदर उस ज्ञान को लेने की उत्सुकता होनी चाहिए, करेक्ट। तो ये वेदों को, नॉलेज को, भगवान के ज्ञान को समझने के लिए ये योग्यता है क्वालिफिकेशन है वेदों को समझने की, हम कहते हैं दिखाओ दिखाओ, आपके अंदर योग्यता है, पहले ये देखना चाहिए हमें क्या योग्यता है। सिंसियर डिजायर टू अंडरस्टैंड हु इज बिहाइंड एवरीथिंग, कितने लोग हैं जिनमें ऐसी सिंसियर डिजायर है। हम आप कितने लोगों को बुलाते हैं, आइए जानिए कौन है सृष्टि के पीछे, कितने लोगों को रुचि है, बहुत कम। आपके यहाँ पर हॉस्टल में कितनी स्ट्रेंथ है, 700, उसमें से अ फ्यू ऑफ यू आर इंटरेस्टेड। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन विच यू हैव, दैट यू हैव सम सिंसियर डिजायर टू अंडरस्टैंड। लोग अपना जीवन ऐसे ही बस खाया पिया मौज किया, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग में गंवा रहे हैं, तो पहले तो हमारे अंदर ये जिज्ञासा तो होनी चाहिए कि मुझे जानना है सच्चाई क्या है, आई वॉन्ट टू नो, वो सिंसियर डिजायर होनी चाहिए, फर्स्ट क्वालिफिकेशन। सेकेंड, एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि मैं अपने बलबूते पर कभी भी नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि मेरी इंद्रियां अपूर्ण हैं, मेरी लॉजिक पावर सीमित है। दिस इज द सेकेंड क्वालिफिकेशन। अगर हमारे अंदर घमंड होगा, है मैं ऐसा अपने आप जानूंगा, है कोई कुछ मुझे कुछ नहीं, तो जानते रहिए अपने आप। जैसे एक चींटी, मैंने आपको उदाहरण दिया था कल, इस रूम के अंदर चींटियां भी हैं मच्छर भी हैं, लेकिन उनकी चेतना का स्तर जब तक वैसा ही रहेगा चींटी जैसा, तब तक वो कभी नहीं समझ सकती कि ये एक NIT हॉस्टल है। इसको बोलते हैं कूप मंडू कन्याएं, कुएं का मेंढक। एक कुएं में एक मेंढक था, बहुत सारे मेंढक थे, उसमें से वो एक सबसे होशियार मेंढक था। उसने बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत इन्वेस्टिगेशन की थी, उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। सभी मेंढकों में टॉप, उसकी एज भी बहुत हो गई थी, बहुत वाइज था, सब उसकी बात मानते थे। तो क्या हुआ, एक बार बाहर से पैसिफिक ओशन से एक मेंढक उस कुएं के अंदर आ गया, तो दोनों मेंढक मिले। तो जो कुएं का मेंढक था उसने पूछना शुरू किया, भाई तुम कहां से आए हो, तो उसने बोला मैं पैसिफिक ओशन से आया। बोला पैसिफिक ओशन ये कितना बड़ा होता होगा, इससे ये जो कुआं है मेरा, मैं इसको सब कुछ जानता हूं, आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस कुआं, इससे दुगना होता होगा, डबल टाइम। तो वो मेंढक बोला अरे डबल टाइम नहीं, बहुत बड़ा है। अच्छा, दो गुने से ज्यादा है। उसने कैलकुलेशन किया अपना सारा, मैथमेटिक्स सारा लगाया, तो चार गुना होता होगा। अभी वो कहां तक जाएगा, वो कुएं का मेंढक कहां तक जाएगा, क्या वो कभी भी पैसिफिक ओशन को समझ पाएगा, एक कुएं का मेंढक, क्यों, उसका एक्सपीरियंस कितना है, पूरे जिंदगी का केवल कुएं का है। तो हम लोगों का एक्सपीरियंस कितना है, मॉडर्न साइंस के द्वारा यूनिवर्स का कितना परसेंटेज हम स्टडी कर सकते हैं, यूनिवर्स का मास एंड एनर्जी कितना परसेंटेज हम अपनी साइंस से स्टडी आज तक किए हैं, लेस देन 5%। 96% इज डार्क मास एंड डार्क एनर्जी, यू नो अबाउट इट, 96% अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू मी, इज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, 96% इज वॉट वी हैव नेवर सीन एंड वी विल नेवर बी एबल टू सी, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव गिवन बिग बैंग थ्योरी। 4% से हमने बिग बैंग थ्योरी की, यूनिवर्स कैसे बना, एंड देयरफॉर देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन बिग बैंग। सो इसको बोलते हैं कूप मंडू न्याय। सो देयरफॉर सेकंड योग्यता है कि हमारे अंदर एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि मैं अपने बलबूते पे नहीं जान सकता। इन दैट हम्बल सबमिसिव एटीट्यूड वी शुड अप्रोच, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर इज दैट कम्युनिकेशन और वेयर इज सच ए पर्सन हु हैज गॉट कनेक्टेड टू गॉड, who has that qualification, he got connected to God and he got that knowledge and from him I can receive that knowledge by submitting to him. तो ये जो person है इसको बोलते हैं spiritual master, guru, spiritual master, representative of the supreme person. So either we have to contact God or we have to contact his representative. One of these two things has to happen. Like Arjuna, he was able to contact Lord Krishna and got knowledge from him. For us, if we are able to contact person like Arjuna, a representative who has been trained, जिनकी इंद्रियों को भगवान के संपर्क में आने से जो शुद्ध हो गए, जिनकी चेतना पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है, हा? वो लोगों से हमें सीखना होगा, उनकी शरण में जाना होगा। ऐसा अगर हम कर पाएंगे तो अपनी चेतना की शुद्धि से हम चीजों को जान पाएंगे, क्योंकि सच्चाई जो है वो सेल्फ एविडेंट ट्रुथ है। Now this concept you please try to understand. What is meaning of self-evident truth? Self-evident truth means the truth which is obvious to a qualified person. Truth which is obvious to a qualified person, that is called self-evident truth. I'll give you an example. For a normal human being having an eyesight of 6x6 and a normal developed intelligence, sun is a self-evident truth. Surya ko pramana paane ke liye, surya hai mujhe dikhao. Surya ka pramana do, surya hai, surya jaisi koi cheez hai, mujhe pramana do. Kya pramana hai iska? Dekh lo ja karke. It's obvious, everybody can see directly, obvious. Theek hai? अभी एक आदमी अपने को रूम पूरा बंद करके बैठ जाए, खिड़की विड़की सब बंद पूरा अंदर, प्रूव मी दैट देयर इज सन, बाहर आके देखो, नो आप यहां मुझे प्रूव करके दिखाओ पहले सन है, देन ओनली आई विल कम आउट. क्या करोगे आप उसको? हाउ विल यू प्रूव हिम? क्या हथौड़ा मारोगे? सो उल्लू आउल, उल्लू जानते ना आप, आउल, आउल को कभी सूरज दिखेगा? क्योंकि वो जब दिन होता है तो अंदर चला जाता है. तो इसीलिए शास्त्रों में जो भी ज्ञान है वो सेल्फ एविडेंट ट्रुथ है, रिप्रेजेंटेड बाय वैदिक साउंड. बट टू बी एबल टू परसीव दैट साउंड, दैट रियलिटी, वी नीड ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन. जैसे मैंने बताया, सूरज को देखने के लिए आंखें चाहिए और एक नॉर्मल इंटेलिजेंस चाहिए. ठीक है, कैटरेक्ट है तो भी नहीं दिखेगा, आंख को कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराओ तो दिख जाएगा. उसी प्रकार से रियलिटी इज सेल्फ एविडेंट, जरूरत है हमें अपने को क्वालिफाई करने की. ठीक है, दैट क्वालिफिकेशन इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस. अभी हमारी कॉन्शियसनेस पॉल्यूटेड है बाई मैटर. अभी हम लोग ये मैटर के संपर्क में होने की वजह से हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, इल्यूजन होता है, इम्परफेक्ट सेंसेस, ये सब हमारी कॉन्शियसनेस को डल कर रही हैं. तो आवश्यकता है हमें एक ऐसे प्रोसेस की जिससे हम अपनी कॉन्शियसनेस को मैटर की कवरिंग से फ्री कर सकें. जब ये कॉन्शियसनेस पूरी तरह से फ्री होगी, कवर्ड नहीं होगी, उस प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस में रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, एवरीथिंग विल बिकम सेल्फ एविडेंट. So this is the process of evidence of Vedic knowledge. What is the process? Jnana Deepa. By the process of purification of consciousness, the reality becomes self-evident. So there is a rigorous training, rigorous purification of senses. The process of purification of senses is required to perceive the truth, whatever is given in Vedas. Dusri baat, Vedo ke andar jo sound hai, uske andar कैपेबिलिटी है. इफ ए पर्सन इज ए प्रॉपर स्टूडेंट हैविंग ऑल प्रॉपर क्वालिफिकेशन फॉर स्टूडेंट, इफ ही रेगुलरली हियर्स द वैदिक साउंड फ्रॉम ए परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, देन दैट साउंड प्यूरिफाइज अस. एंड एज द प्यूरिफिकेशन हैपन, वी कैन गो थ्रू स्टेजेस ऑफ रियलाइजेशन. जैसे कि ये स्टेजेस हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ सेंस कॉन्शियसनेस की. ये स्टेजेस हैं. सबसे नीचे है अन्नमोय. हमारे जैसे हम बच्चे से हम बड़े होते हैं तो भी हम इन स्टेजेस से गुजरते हैं. अन्नमोय मतलब चेतना का वो स्तर जिसमें हमारी चेतना होती है कि हम हर चीज को खाने की चीज की तरह देखते हैं. जैसे हम छोटे बच्चे हो, आप देखो कोई भी चीज दोगे वो क्या करेगा, उसका उसको हर चीज खाने की चीज ही दिखती है. तो ये चेतना का स्तर है अन्नमोय. जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो नेक्स्ट स्टेज कॉन्शियसनेस डेवलप होती है और वो स्टेज होती है प्राणमय. प्राणमय मतलब अभी उसको अपने जीवन को बचाने की इच्छा होती है, मुझे अपने को बचाना है. सेकंड स्टेज. थर्ड स्टेज ज्ञानमय. जब हम और थोड़े बड़े होते हैं तो इंक्विजिटिवनेस आती है. आपने देखा होगा बच्चे थोड़े बड़े तो हर चीज पूछते हैं, हजार क्वेश्चन पूछते हैं, पिताजी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो ऐसा है, वो क्या है. इंक्विजिटिवनेस, हर चीज जानना चाहते हैं. Then next comes विज्ञानमय. ये आप लोग की स्टेज, अगर आप लोग उस चेतना में डेवलप हो पाए तो वो स्टेज है टू आस्क द क्वेश्चन व्हाई, क्यों. पहले ज्ञानमय स्टेज में क्वेश्चन था क्या, अभी क्वेश्चन आया क्यों, व्हाई टू डू दिस। इसलिए आप देखिए आपकी जवानी की स्टेज में हम लोग का जमता नहीं है अपनी पुरानी पीढ़ी के साथ में। वो कहते हैं बेटे ऐसा करो, क्यों करें, ऐसा क्यों नहीं, यही क्यों, वी वॉन्ट टू नो द रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, करेक्ट। सो दिस इज द स्टेज विच इज डेवलपिंग, कॉन्शियसनेस इज डेवलपिंग। ये बुद्धि का स्टेज है, ज्ञानमय माइंड का स्टेज है। तो जैसे जैसे कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है, डेवलप होती है, वैसे वैसे हम लोग अधिक अधिक चीजों को समझ पाते हैं, है ना। देख रहे हैं बड़े होने पर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड सेम थिंग। आप जब 10 साल 15 साल पहले यू वुड नॉट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। उसी प्रकार से एक हायर स्टेज है आनंदमय, जिस चेतना के स्तर पे हम आत्मा को समझ पाते हैं और परमात्मा को समझ पाते हैं। सो दिस इज आनंदमय स्टेज। उसी प्रकार से स्पीसीज में ट्रीज प्लांट्स उनकी चेतना बहुत संकुचित होती है, जानवरों की चेतना उससे ज्यादा विकसित होती है, मनुष्य की चेतना और अधिक विकसित होती है। और शास्त्रों में प्रोसेस है जिससे मनुष्य अपनी चेतना को कंप्लीटली प्यूरिफाई करके प्योर स्टेज में ला सकता है, जिस स्टेज में ही कैन सी गॉड आईज टू आईज, लाइक वी सी इन द स्टोरी ऑफ ध्रुव महाराज। आपने ध्रुव का नाम सुना है, ध्रुव महाराज। तो उनके जो पिताजी थे, ही डिडंट अलाउ हिम टू सिट ऑन हिज लैप, ही वॉज सन ऑफ ए एम्परर ऑफ द होल वर्ल्ड, है ना। तो ही वॉज ए क्षत्रिय, छोटा सा बच्चा था 5 साल का, बट ही गॉट वेरी अनॉयड कि मेरे पिताजी ने मुझे गोदी में नहीं बैठने दिया, क्योंकि सौतेली माँ थी उसकी वजह से। तो उसने प्रण लिया कि मैं अपने पिताजी से भी बड़ा राजा बन के दिखाऊंगा, मीन्स एम्परर से भी बड़ा, तो और कौन होगा वो। तो उसकी मदर, जो उसकी रियल मदर थी, उसने बोला भगवान ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो उसने बोला भगवान कहाँ है। तो माता ने बोला मैंने सुना है भगवान जंगल में रहते हैं। तो वो निकल गया जंगल में, वहाँ पर उसको नारद मुनि जो एक महान संत है वो मिले, और उन्होंने जब देखा कि बच्चे के अंदर इतना जोश है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तो उन्होंने एक उसको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव, इस मंत्र का जप करो और तुमको भगवान मिलेंगे। सो ही चैंटेड, ही डिड लॉट ऑफ तपस्या। पहले महीने में केवल कंदमूल रूट्स ये सब खाए, दूसरे महीने में केवल पानी पिया, तीसरे में पानी भी नहीं केवल हवा, ऐसे करके सीवियर ऑस्टेरिटीज एंड मेडिटेशन ऑन द लॉर्ड ही डिड। तो ही स्टार्टेड सीइंग लॉर्ड इन हिज हार्ट फर्स्ट, फोर हैंडेड विष्णु फॉर्म, दिस इज हिस्टोरिकल अकाउंट। एंड देन सडनली लॉर्ड डिसअपीयर्ड, ही ओपन्ड हिज आईज एंड ही सॉ आई टू आई। सो दिस इज वन एग्जाम्पल हाउ gradually by purification of senses one is able to actually see God, see the soul, see everything incrementally. तो शास्त्रों में systematically stages दी हैं, like in science we have stages in experiment, if you do step number 1 this will be the result, then you do step number 2 this will be the result, and you can verify it. Similarly शास्त्रों में जो भी ज्ञान दिया है, ज्ञान है और एक process है how to realize that knowledge, लेकिन हमें वो एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा ना। बिना एक्सपेरिमेंट किए हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आई विल बी एबल टू सी द रिजल्ट, करेक्ट। सो दैट एक्सपेरिमेंट, दैट प्रोसेस डिफाइंड है, लिखा हुआ है, जो भी कोई इसको करेगा सेम रिजल्ट यू विल गेट। आज तक कितने लोगों ने ऐसा किया है, इसलिए मनगढ़ंत नहीं है, इट्स अ टॉप मोस्ट साइंस, बट दिस इज अ साइंस विच डज नॉट डिपेंड सिंपली ऑन अवर सेंसेज एंड लॉजिक। बियॉन्ड दैट फर्स्ट वी हैव टू प्यूरिफाई अवर सेंसेज, देन बाई प्यूरिफाइड सेंसेज वी विल परसीव रियलिटी। ओके, सो ये जो प्रोसेस है इसका एक जिस्ट आज हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकल प्रोसेस का। फिर आने वाले हर सैटरडे से वी विल ग्रेजुअली देन इलेबोरेट ऑन दीज ऑल दिस टॉपिक्स ग्रेजुअली। First step of purification of senses is hearing about God, about His message from purified persons of purified consciousness who are fully surrendered to Him, engaged in service of God, in this way who are connected to God. ऐसे लोगों से regularly भगवान के शास्त्रों के बारे में सुनना, this is the first step. This is what you are doing presently. You are hearing about God, and I am coming in a disciplic succession. जो वेदों का ज्ञान है वो ऐसे ही bona fide गुरु शिष्य परंपरा में आता है। जैसे आपकी बोनाफाइड यूनिवर्सिटीज होती हैं, कोई भी अपने घर में जैसे मेडिकल की बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, क्या मेडिकल की बुक्स घर में पढ़ने से कोई सर्जन बन सकता है? यू नीड ए बोनाफाइड कॉलेज टू अटेंड, गेट ट्रेन अंडर बोनाफाइड पीपल, डॉक्टर्स, करेक्ट। सिमिलरली स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए भी देर आर प्रॉपर यूनिवर्सिटीज, यू नीड टू गेट ट्रेन्ड, रिगरस ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू प्यूरिफाई अवर सेंसेस। सो दिस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इज कमिंग अंडर वन सच बोनाफाइड लीनिएज ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर्स, सेल्फ रियलाइज्ड आचार्यास। आचार्यास मतलब स्पिरिचुअल मास्टर्स, द सोल्स हु गॉट कनेक्टेड विद गॉड एंड दे रियलाइज दैट नॉलेज। सो इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, हु फाउंडेड इस्कॉन, ही इज कनेक्टेड टू दैट परंपरा एंड आई एम हेयर ट्राइंग टू फॉलो हिम एंड रिप्रेजेंटिंग हिम, एंड देयरफॉर नाउ यू आर कनेक्टेड इन दिस वे टू द परंपरा, सो यू हियर रेगुलरली, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, सो देयरफॉर वी हैव अरेंज दिस रेगुलर क्लासेस। सेकेंड स्टेप इज प्रेयर, प्रेइंग टू गॉड, बिकॉज हम आपको एक और क्लास में पूरा बताएंगे कि भगवान हम यहाँ कैसे आए। सो बेसिकली वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, बट वी हैव अ माइन्यूट इंडिपेंडेंस बिकॉज वी आर कॉन्शियस। वेन वी मिस यूज दैट इंडिपेंडेंस एंड डोंट वॉन्ट टू सर्व गॉड, वॉन्ट टू एन्जॉय दिस वर्ल्ड, देन वी कम हियर, बिकॉज अवर नेचुरल रिलेशनशिप विद गॉड इज दैट वी आर सर्वेंट, ही इज मास्टर, बिकॉज ही इज सुप्रीम एंड वी आर स्मॉल, सो वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम। सो नेचुरल रिलेशनशिप इज टू सर्व, बट सम ऑफ अस, ऑल दोज इन द मटेरियल वर्ल्ड, वी आर दोज हु रिबेल्ड, वी विल नॉट फॉलो, वी विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ यू। जैसे बच्चा बड़ा होता है कभी कभी तो अपने पिताजी से अलग होना चाहता है, पिताजी मुझे अलग बिजनेस करना है, मैं आपके साथ नहीं, मैं अलग करूंगा अपना। तो पिताजी समझाते हैं कि बेटे सब कुछ रेडी है, क्यों कर रहे हैं, भटकोगे, नहीं नहीं मुझे तो अलग जाना है, मैन ही गिव्स हिम सम मनी, ठीक है चलो करके देख लो, जब पछताओगे तो फिर आ जाना। सो हम लोग फिर करते हैं, पछताते हैं, देन वी कम, पिताजी गलती हो गई। सो हम लोग ऐसे हैं। सो देयरफॉर गॉड फॉर अस हैज गिवन दिस स्क्रिप्चर्स गाइडेंस हाउ यू कैन कम बैक। So he has given guidance, but the essence of that guidance is that we have to accept, I want to come back. That repentance and that prayer, that please, I did a mistake, I want to come back. I have understood in this material world, everything I got is temporary. I am eternal, I need eternal happiness, I need eternal family, eternal father, eternal mother. Not these temporary relationships, that cannot satisfy me. Jo vyakti is chetna ke star pe aa gaya hai, उसके लिए आध्यात्मिक जीवन का रास्ता शुरू होता है, और उसके लिए फिर ये प्रेयर। सो दिस इज सेकंड स्टेप, प्रेयर। तो प्रेयर करने का तरीका है जो स्क्रिप्चर से भगवान ने दिया है स्पेशली फॉर दिस एज, दैट इज चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये जो हरे कृष्ण कर रहे हैं वो क्या है, इट्स ए प्रेयर टू गॉड। हरे कृष्ण राम, दीज आर द थ्री रूट वर्ड्स इन दिस मंत्र। कृष्णा एंड राम दे आर, दे रिप्रेजेंट, दे साउंड इज द साउंड which is a sound which represents the supreme person, supreme person, Krishna, Ram, they are the different name, Bhagwan ke anant naam hai, Allah, Jehovah, bhasha alag alag hai, dharma alag alag ho sakte hai, but the name which indicates the supreme person, that's his name. So Krishna ka matlab hai the supreme attractive, Parmeshwar, the supreme controller. So these different names are there, but Krishna is the personal name, उनकी एक्टिविटी के आधार पर। सो एंड रामा मीन्स सोर्स ऑफ ऑल प्लेजर, बिकॉज गॉड इज फुल ऑफ प्लेजर, इफ यू कैन कम इन कॉन्टेक्ट विद हिम वी विल ऑल्सो बी फुल ऑफ स्पिरिचुअल प्लेजर। सो देयरफॉर रामा एंड कृष्णा आर द प्रिंसिपल नेम्स, एंड हरा रेफर्स टू द सुप्रीम एनर्जी ऑफ गॉड, बिकॉज गॉड मीन्स एनर्जेटिक एंड एवरीथिंग एज वी सी इंक्लूडिंग अस मैटर इज एनर्जी ऑफ गॉड। गॉड एनर्जेटिक एंड एनर्जी इज वॉट एवरीथिंग इज। तो इन दिस प्रेयर ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा वी आर कॉलिंग आउट टू लॉर्ड एंड हिज एनर्जीज दैट प्लीज आई वॉन्ट टू कम बैक टू यू, प्लीज एंगेज मी, एंगेज इन योर सर्विस, प्लीज हेल्प मी रिवाइव माई कॉन्शियसनेस। भगवान को जो हम भूल गए हैं, है ना, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, हमारी याददाश्त चली गई, माता पिता को भूल गए, रिलेशनशिप पूरा हृदय से खत्म हो गया, तो उसको वापस याद दिलाना पड़ता है। इसी प्रकार से ये हरे कृष्णा मंत्र वो प्रेयर है जिससे ग्रेजुअली अवर रिमेम्बरेंस ऑफ दैट रिलेशनशिप विद द सुप्रीम विल गेट रिवाइव्ड। ओके. एंड देन द थर्ड थिंग इज जो हियरिंग हमने बताया, हियरिंग के अंदर ये बुक्स जो आपको दी हैं, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, भगवत गीता एंड थिंग्स रेगुलरली, दैट इज अनदर इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ हियरिंग, लेक्चर्स, अटेंडिंग लेक्चर्स एंड रीडिंग दिस बुक्स. देन ऑनरिंग सैंक्टिफाइड फूड लाइक प्रसादम वी हैव ब्रॉट फॉर यू, दिस इज सैंक्टिफाइड फूड. सो ये सब चीजें हमारी चेतना को शुद्ध करती हैं धीरे धीरे. सो जस्ट इन नटशेल आई हैव गिवन यू एज एन इंट्रोडक्शन. ग्रेजुअली वी विल एक्सपेंड ऑन दिस थीम. नाउ वी विल 5 minutes वी विल प्रैक्टिस दिस प्रेयर बाय चैंटिंग महामंत्र. सुबह हमने क्या किया, कीर्तन किया. देर आर टू वेज यू कैन प्रे. एक कीर्तन, कीर्तन मतलब सब लोग मिलकर के एक गायक दूसरा गायक गाने के साथ में वाद्य के साथ में मृदंग करता, दैट इज कॉल्ड कीर्तन. दैट इज फॉर मैनी पीपल टूगेदर. बट इंडिविजुअली फॉर योर सेल्फ एवरी डे रेगुलरली यू कैन प्रे एंड मेडिटेट ऑन दिस साउंड वाइब्रेशन ऑफ हरे कृष्ण मंत्र. दिस साउंड वाइब्रेशन ऑफ हरे कृष्ण इज गॉड इन द साउंड फॉर्म एंड इट हैज द पोटेंसी टू प्यूरिफाई अस. एंड यू कैन सी द इफेक्ट इन योर लाइफ. हाउ, वॉट इफेक्ट यू विल सी? फर्स्ट यू विल सी प्यूरिफिकेशन ऑफ योर हार्ट. लस्ट, एंगर, ग्रीड, ऑल दिस थिंग्स यू विल सी हाउ दे विल ग्रेजुअली फ्लाई अवे फ्रॉम योर हार्ट इफ यू रेगुलरली एंड सिंसियरली प्रैक्टिस दिस चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण मंत्र. दिस इज नॉट अ मंत्र इन्वेंटेड बाई स्कॉन. दिस इज अ मंत्र इन स्क्रिप्चर्स, वेदास, कली शंतरना उपनिषद. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इति षडोशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम नतः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते. ब्रह्मा जी सेज दिस दैट दिस 16 वर्ड्स मंत्र इज द बेस्ट वे टू प्यूरिफाई अवर सेल्फ इन दिस प्रेजेंट एज ऑफ कलियुगा. ओके.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम.